चले हम एक नई सुबह की ओर, हाथ में लिए हाथ नई मंजिल की
मंजिल क्या
सपना है हमारा एक ऐसी दुनिया का, घर घर में जहां उजाला हो,
जो वादा है वो निभाना है, सभी को ये याद रखना है, जहां साथ साथ हम चलते हैं कामयाबी की वहां फुहारे हो, आओ चले हम।
नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम हक हमारा वादा तुम्हारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन। दोस्तों, इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आए हैं वादा ना तोड़ो अभियान और गैर सरकारी संस्था वन वर्ल्ड साउथ एशिया।
दोस्तों, आपको तेज प्रकाश का भी प्यार भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आपको भारतीय विकास और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को पाने में भारत की भूमिका पर आधारित हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे।
आपको याद होगा अब तक हम शुरुआती 6 सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों पर चर्चा कर चुके हैं।
दोस्तों, हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हम अपने कार्यक्रम के 50 एपिसोड भी पूरे कर रहे हैं।
दोस्तों, आपके साथ की वजह से ही हम कुछ विशेषज्ञों और बुद्धिजीवी वर्ग को अपने कार्यक्रमों से जोड़ने में कामयाब रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, हर एपिसोड पर आपसे मिलने वाले सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं और हमें प्रोत्साहित करती हैं कि हम इसी तरह भारतीय विकास से जुड़े मुद्दों पर कार्यक्रम बनाते रहें। लगातार हमें सहयोग देते रहने के लिए हम आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
हमें विश्वास है कि आपके साथ की बदौलत हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे।
दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 6 पर, जिसका उद्देश्य है HIV/AIDS, मलेरिया और अन्य घातक बीमारियों से मुक्ति पाना। और आज के एपिसोड में आज हम बात करेंगे सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 7 पर, जिसका उद्देश्य है पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना।
दोस्तों, गरीबी कम करना और स्थिर विकास को पाना एकजुट होकर ही संभव है।
सहस्त्राब्दी लक्ष्य निश्चित करता है कि पर्यावरणीय स्थिरता भूमंडलीय आर्थिक और सामाजिक कल्याण का ही एक भाग है।
हालांकि जंगल, जमीन और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस कदर शोषण हो रहा है कि पिछले कुछ दशकों से दुनिया भर के लिए विनाशकारी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं।
निरंतर बढ़ते बाजार के दबाव, अतिक्रमण, लकड़ी की स्मगलिंग, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण, दूर दूर तक प्रदूषण फैलाकर प्राकृतिक निवास का नाश और बड़े पैमाने पर आधुनिकता लाने की होड़ में हम सब ने अपनी जैविक भिन्नता को बड़े पैमाने पर खतरे में डाल दिया है।
दोस्तों, जैव भिन्नता के खतरे को कम किया जाना चाहिए और लोगों के लिए पीने का साफ पानी तथा बुनियादी स्वच्छता बढ़ाई जानी चाहिए।
इसके अलावा सरकार को इन समस्याओं से निपटने के लिए स्थिर विकास के सिद्धांत को देश की नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल करना चाहिए।
दुनिया भर में हर साल करीबन 30 लाख अकाल मृत्यु वायु प्रदूषण की वजह से ही होती है, जिसमें भारत में होने वाली मृत्यु सबसे ज्यादा है।
और ये जानकर तो और भी दुख होता है कि भारत की करीब 4% आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। इनमें से 50 लाख से ज्यादा की जनसंख्या 6 साल से भी कम उम्र के बच्चों की है।
ये लोग रहन सहन की बुनियादी जरूरतों से भी वंचित है। इनके पास ना तो पर्याप्त स्वच्छता है, न साफ सुथरा पानी है और न ही रहने के लिए स्थायी घर।
सभी प्राकृतिक संसाधनों में स्वच्छ पानी के संसाधनों का सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है।
औद्योगिक प्रदूषण, लगातार बढ़ता शहरीकरण और वर्तमान कृषि के तरीकों ने इस समस्या को और बुरा रूप दे दिया है।
यही नहीं, भारत में वनों की कटाई में विस्तार की बात तो चौंका देने वाली है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कुमार जालान। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर जालान से ये बातचीत।
आओ चले हम।
डॉक्टर जालान जी, कार्यक्रम हक हमारा वादा तुम्हारा में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आप किस प्रकार एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को हमारे श्रोताओं को समझा पाएंगे?
देखिए, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 7 के अंतर्गत इसको महत्वपूर्ण दिशा देने की चेष्टा की है। और ये सबसे पहले इसीलिए जरूरी है कि इसी की वजह से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के जरिए हम लोग गरीबी उन्मूलन कर सकते हैं और सतत विकास की ओर बढ़ सकते हैं। हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये रहेगा कि जो वन विकास के जो संपत्ति है उसको हम अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचाएं और उनको एक ऐसा वातावरण दें जो वो डिजर्व करते हैं।
आज भारत के सामने पर्यावरण से संबंधित मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी हैं?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके अंतर्गत हमारी जो पानी की समस्या है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। हमारे जो कृषि प्रधान लोग हैं उनके जो अनाज उगाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी और आगे महंगाई बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि जिस तरह के बीज आजकल मिल रहे हैं उनसे प्रोडक्टिविटी कम होने की उम्मीद है और जो ट्रेडिशनल सीड्स हुआ करती थी उनके सीड बैंक्स हैं नहीं। उसी के कारण हम लोगों को आगे खाने पीने की महंगाई पे खास ध्यान देना होगा और ये एनवायरनमेंट की वजह से एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है।
क्या आपको लगता है कि हमारे पास इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नीतियां और कानून हैं?
देखिए, भारत सरकार ने 30 जून 2008 को एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च किया था। उसके अंतर्गत 8 नेशनल मिशन हैं और वो मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनर्जी एफिशिएंसी, सोलर एनर्जी, सस्टेनेबल हैबिटेट, पानी, एग्रीकल्चर, हिमालयन इकोसिस्टम स्ट्रेटेजिक नॉलेज पे हैं और उसके बदौलत मेरे ख्याल से अपने देश में बहुत सारी नीतियां हैं जिसके बदौलत हम लोग इन सब मुश्किलों से लड़ सके और हमारे देश में लड़ने की क्षमता है।
पर्यावरण के नजरिए से सरकार द्वारा वेदांता का खनन कार्यक्रम रोकने को बहुत से लोगों ने सराहा है और माना है कि ये अच्छा कदम था। आपका इस बारे में क्या मानना है और क्या ये बस एक बार तक सीमित रह जाएगा?
देखिए, इसको आपको और ब्रॉड बेस अप्रोच लेके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए वो हमारे देश में पहले भी थे। हम लोगों को एनवायरमेंट कंजर्वेशन को प्रायोरिटी देना चाहिए। जो हमारा विकास का मुद्दा है उसके लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है और इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट को साथ साथ कैसे हम लोग रख सकते हैं उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम है सरकार का और बड़ा सराहनीय कदम।
विकास और पर्यावरण दोनों शब्द लगभग एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, इनमें संतुलन किस प्रकार लाया जा सकता है?
देखिए, जब हम इस संबंध में बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट जो बार बार सामने आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पी कॉन्सेप्ट। ट्रिपल पी का मतलब होता है पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हम लोगों को इन तीनों की संतुलन रखना जरूरी है कि दुनिया में लोग भी रहें, हमारा जो पृथ्वी है वो भी चले, उसके में जो लोग रह रहे हैं उनको ये सब सुविधा मिले और लोग जो आमदनी कमाना चाहते हैं पृथ्वी के बदौलत, पृथ्वी के जो नेचुरल रिसोर्स उसके बदौलत वो भी वो कर पाए। देखिए, इसमें प्रॉफिट और प्रॉफिटियरिंग में हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। प्रॉफिट करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब लोग प्रॉफिटियरिंग में उतराव हो जाते हैं तब जो ग्रीड की भावना है वो आ जाती है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, देयर इज इनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड।
पर्यावरण के क्षति से पहला नुकसान गरीबों और अधिकारहीन लोगों को होता है, आपका इस बारे में क्या मानना है?
देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र का MDG 7 है उसका भी मुद्दा यही है। उसमें हम लोग के चार टारगेट हैं। पहला टारगेट क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो देश के जो नीति है उसमें हम लोग लाए और उसी की वजह से जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की जो कमी हो रही है उसको रोके। जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जीव जंतु जो फ्लोरा फौना का जो लॉस है उसमें भी हम उसकी रेट ऑफ लॉस को कम करें और ये चेष्टा करें कि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह हैं उनमें से टाइगर का पॉपुलेशन बढ़े और भी जो वाइल्ड लाइफ है उन सब का भी पॉपुलेशन बढ़े। और दूसरा क्या है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जो लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, 2015 तक MDG 7 के जरिए हमारी ये चेष्टा है कि हम इसको आधा कर सकें। और जो लोग स्लम्स में रह रहे हैं बाय 2020 हम लोग चाहते हैं कि इनकी जो जिंदगी है, इनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें काफी सुधार हो।
डॉक्टर जालिम जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।
मुझे यूनाइटेड नेशंस में सारे स्टेट के हेड्स ने फैसला किया कि गरीबी 2015 तक खत्म की जाएगी। आओ मिलके खड़े होएं इस गरीबी को खत्म करने के लिए।
आप भी डॉक्टर किरण बेदी की इस मुहिम का हिस्सा हो सकते हैं। आवाज उठाइए www.noiseagainstpoverty.org पर रजिस्टर करिए। कार्यक्रम हक हमारा वादा तुम्हारा में आपका फिर से स्वागत है और इसे आप तक लेकर आए हैं वादा न तोड़ो अभियान और गैर सरकारी संस्था वन वर्ल्ड साउथ एशिया।
दोस्तों, आप कार्यक्रम पर अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। SMS के जरिए अपनी राय देने के लिए आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए वादा और स्पेस देकर अपना संदेश लिखिए और इसे भेज दीजिए 9818613839 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@wadanatodo.net।
दोस्तों, भारत में इस समय बहुत तेज आर्थिक प्रगति हो रही है और आने वाले समय में भारत चीन को भी पीछे छोड़ सकता है।
लगातार बढ़ती जनसंख्या, खराब सरकारी नीतियां और खराब सुविधाओं के साथ पर्यावरण का खतरा इस प्रगति को कभी भी रोक सकता है।
वर्ष 2004 में 94% ग्रामीण इलाकों तक पानी की पहुंच सुनिश्चित की जा चुकी थी, पर फिर भी पीने का अच्छा और स्वस्थ पानी अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।
इस तरह 2020 तक जल, जमीन, वायु और जंगलों पर दबाव बढ़ जाएगा।
दोस्तों, इन सब मुद्दों पर और अधिक जानकारी के लिए हमने बात की वाटर एड की डॉक्टर इंदिरा खुराना से। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
डॉक्टर इंदिरा जी, हक हमारा वादा तुम्हारा में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
कई लोगों का मानना है कि नई उदारवादी आर्थिक नीतियां और औद्योगिकरण पर्यावरण पतनहास खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या इन दोनों के बीच कोई संतुलन हो सकता है?
मेरा भी यही मानना है कि जिस तरह हाल में इस देश में विकास हो रहा है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर नहीं जा रहा। जिस तरह से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज नहीं बल्कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये हम अपने भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहे। और रहे बात कि अगर ये पॉसिबल है कि नहीं, तो मेरा भी ये पूरा विश्वास है कि हम डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को साथ लेकर ही चल सकते हैं, अगर हम इसको एक सिक्के के दो पहलू माने तो।
भारत में जल और वायु प्रदूषण किस स्तर तक पहुंच चुका है?
क्योंकि मेरा काफी काम जल के ऊपर है, मैं जल की बात ही करूंगी। अगर हम इस देश में जल के प्रदूषण की बात करें तो ये काफी चिंताजनक, मैं कहूंगी क्राइसिस सिचुएशन तक हम आ गए हैं। हमारे पानी के को प्रदूषित करने के कई कारण हैं, जैसे कि कृषि, उद्योग और सैनिटेशन। और अगर हम इनका ख्याल नहीं रखें, ना तो ये हमारे विकास को हमारे विकास में बाधा डालेगा, बल्कि हमारे सेहत पर भी इसका असर दिखने लगा है।
अगर हम क्लाइमेट चेंज शब्द का इस्तेमाल करें तो आप हमारे श्रोताओं को इस बारे में क्या कहेंगी?
देखिए, कई सालों में ये वैज्ञानिकों के बीच में चर्चा हो रही है कि डिबेट हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज असल में हो रहा है कि नहीं। पर अगर हम अभी लोगों में ये विश्वास होने लग गया है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, और अगर हम क्लाइमेट चेंज का असर पानी के ऊपर देखें, तो हमको ये भी देखना चाहिए कि अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता तो उस हालत में भी हम अपने पानी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ऑलरेडी हम एक क्राइसिस सिचुएशन में आ गए हैं, और जो ये क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी जो वर्षा पे असर हो रहा है, उसमें हमारी जो क्राइसिस सिचुएशन है ये और भी गहरी होने वाली है।
हम सब अकेले और मिलकर इस पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं?
मैं भी शहर में रहती हूँ, और मेरा ये मानना है कि जो शहर में लोग हैं, वो उनका जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ, जो रिश्ता है, ये कहीं टूट गया है या टूट रहा है। अगर हम सब मिलके सोचें कि हमको जितना ही चाहिए उतना ही हम एक्सट्रैक्ट करें, उतना ही यूज करें, तो जरूर हम इस समस्या को हल कर सकते हैं।
दोस्तों, डॉक्टर इंदिरा खुराना से हमारी ये बातचीत चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
चंदा चमके चम चम चीखे चौकंदा चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर।
से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह।
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना।
खड़क खड़क के खड़के खिड़के खड़क सिंह।
चम चम चीखे चौकन्ना चोर चीटी चा...
जाते चीनी चटोरी चीनी खो
आओ चली हम।
दोस्तों MDG 7 को लेकर डॉक्टर इंदिरा खुराना जी से हमारी ये बातचीत जारी है, तो आइए एक बार फिर सुनते हैं डॉक्टर इंदिरा खुराना जी से बातचीत का अगला अंश।
MDG 7 का एक टारगेट है पेयजल एवं स्वच्छता के अभाव में रह रहे लोगों की संख्या आधी करना, इसके बारे में आपका क्या विचार है?
देखिए हाल ही में गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट में रिपोर्ट टेबल करी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम पेयजल की बात करें तो हमने अपना जो ये टारगेट है MDG 7 का उसको हमने अचीव कर लिया है, पार कर लिया है। पर जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है उन्होंने साथ में एक वार्निंग भी इशू करी है कि इसकी अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ये एक मतलब एक चिंताजनक बात है क्योंकि जो हमारा पानी का स्रोत है वो बड़ी जल्दी सूख रहा है। अगर हम स्वच्छता की बात करें तो हमने अभी तक अपना टारगेट अचीव नहीं किया और उसमें है कि जो कवरेज की जो बात आती है तो कई रिपोर्ट्स है जिनके आंकड़े अलग अलग होते हैं, तो कभी ना कभी हम इन सब अलग अलग आंकड़ों को लेके इन पे कॉमन फिगर पे अराइव करना पड़ेगा।
MDG 7 के नजरिए से UPA 2 की नीतियों को आप किस प्रकार देखती हैं?
मैं इस पे स्वच्छता के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगी। ये साउथ एशिया रीजन में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है हर 2 साल में जिसका नाम साकोसान है। 2009 में ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी और जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। उस इनॉग्रल सेशन में मनमोहन जी ने कहा था कि स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता साउथ एशिया के हर एक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। हाल ही में जुलाई में एक UN मीटिंग में हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे उन्होंने हाँ कहा था कि राइट टू वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए। अब हम ये चाहेंगे कि जो हमारी ये UPA सरकार है ये इस पे काम करे कि कैसे ये हक लोगों को मिल सके, खासकर वो लोग जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं है और जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है साफ पेयजल और स्वच्छता के। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैं ये नहीं कह रही कि ये सब काम है वो सरकार को करना चाहिए। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने के नाते मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हम एक कंसल्टेशन नेशनल लेवल कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अक्टूबर में जिसमें ये विषय जो ये राइट टू ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और कैसे MDG के आगे भी कैसे इस पे हमें काम करना चाहिए।
डॉक्टर इंदिरा जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था मनाना फजूल था मनाना फजूल था बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया मुकद्दर समझ लिया मुकद्दर समझ लिया जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
यूनाइटेड नेशंस में सारे स्टेट के हेड्स ने फैसला किया कि गरीबी 2015 तक खत्म की जाएगी। आओ मिलके खड़े होए इस गरीबी को खत्म करने के लिए।
आप भी डॉक्टर किरण बेदी की इस मुहिम का हिस्सा हो सकते हैं। आवाज उठाइए www.noiseagainstpoverty.org पर रजिस्टर करिए। कार्यक्रम हक हमारा वादा तुम्हारा में आपका फिर से स्वागत है और इसे आप तक लेकर आए हैं वादा न तोड़ो अभियान और गैर सरकारी संस्था वन वर्ल्ड साउथ एशिया।
पर्यावरण के नुकसान से होने वाले इंसानी फायदे के कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी सबके लिए बड़ा खतरा बना हुआ है।
इसीलिए देश के किसी शहर, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर बनने वाली योजनाओं में पर्यावरण से संबंधित नीतियों का कोई स्थान नहीं है।
स्थानीय स्तर पर बनाई जाने वाली नीतियों में वहाँ की जरूरतों पर ध्यान नहीं रखा जाता। ये अंतर बाद में क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी समस्या पैदा करती है।
आओ चले हम।
दोस्तों, आप कार्यक्रम पर अपना सुझाव और प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाते रहिए। SMS के जरिए अपनी राय देने के लिए आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए वादा और स्पेस देकर अपना संदेश लिखिए और इसे भेज दीजिए 9818613839 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@vadanatodo.net।
अगर आप हमें फोन करना चाहते हैं तो डायल कीजिए 0114608231।
दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन वादा करते हैं कि 24 सितंबर को इसी समय यानी शाम 4:30 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे।
लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे तेज प्रकाश
और जैस्मिन को
इजाजत। नमस्कार।
आओ चले हम एक नई सुबह की ओर, हाथ में लिए हाथ नहीं मंजिल की
मंजिल क्या
सपना है हमारा एक ऐसी दुनिया का, घर घर में जहां उजाला हो।
जो वादा है वो निभाना है, सभी को ये याद रखना है, जहां साथ साथ हम चलते हैं कामयाबी की वहां फुहारे हो।
आओ चले हम।
चलिए हम।